और कहते हैं व्यास परीक्षित महाराज ने उनको मुनि सत्तम कहा और इन्होंने राजर्षि सत्तम कहा। उन्होंने कहा मुनि सत्तम, इन्होंने कहा जे ऋषि सत्तम और उसमें एक और बढ़ा करके लगा दिया राजर्षि राज ऋषि सत्तम। ऋषि करने से भी हो सकता था, अगला पद भी हो जाती। इन्होंने कहा जी मुनि सत्तम और ये कहते बस बराबरी का उल्लास लेना देना बराबर हो जाता है। किंतु सुखदेव गोस्वामी जी ने और इनको कुछ अपने से भी बढ़ा दिया, इसलिए राज ऋषि ऋषि सप्तम कौन है? भक्त महाराज, ये लोग ऋषि हैं। विश्वामित्र जी पहले तो राज ऋषि थे, राज ऋषि के बाद में क्या हुए? ब्राह्मण। किंतु ऋषि सप्तम नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए सप्तम? अराजस्वी और ब्रह्मति में क्या अंतर है? एक राजा से माने क्षत्रिय से ऋषि बने और एक बने हैं इसे उत्तम होकर के ब्राह्मण। ये तो जातिगत एक भाव है, उसमें वो ऋषि हुए ब्रह्मति और राजा थी। और ये सप्तम है ऋषि होने, क्यों? विश्वामित्र ने ऐसी एक निष्ठा पहले नहीं की, पीछे पूरी रामचंद्र ने भक्ति में हुई है। किंतु उनसे इनका राजसी सप्तम होना बहुत उन्नत है, क्योंकि कृष्ण की लीला कथाओं में उनकी एकांतिक रूप से रुचि है। इसलिए कह रहे हैं ये टीकाओं में कह रहे हैं जो भक्त इत्यादि राजऋषिगण राजर्षि थे, किंतु तुम राजर्षि सप्तम हो, कृष्ण भक्त होते। जो लोग कृष्ण भक्त होते हैं उनको सब कहा जाता है। जो कृष्ण में अनुरक्त हैं, भक्तों में भी अनुरक्त हैं, अनुरक्ति आदि है, उनको सत्तर कहते हैं। और गोविंद के चरणों में प्रेम जिनको उत्पन्न हो गया है उनको कहते हैं सत्तर। प्रसिद्ध महाराज जी को कृष्ण के चरणों में प्रेम है, इसलिए इनको राजस राज ऋषि। सुखदेव कुमार गोस्वामी महाराज ने परीक्षित को इंगित से कहा तुमने हमको मुनि सत्तम कहा है, मैं मुनि सत्तम हूं ठीक है, किंतु तुम हमसे श्रेष्ठ हो। कहने में कोई संकोच नहीं किया, तुम श्रेष्ठ हो। क्यों? कि ऋषि सत्तम और मुनि सत्तम बराबर था, किंतु आपने एक और अधिक गुण हो गया, आप राज राज ऋषि राज। अर्थात इनका प्रेम है, विशेष करके इसी के वजह राजस्व होने के वजह से ही कृष्ण की डायरेक्ट कृपा इनको। महाराज परीक्षित बुद्धि सम्यक क्यों व्यवस्थित है? सुखदेव गोस्वामी का हेतु पर वासुदेव कथा से जग जाता नेति वासुदेव की लीला कथाओं में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, एक निष्ठा है। इसलिए क्यों भागवत के पहले ही पहले स्कंद के पहले ही अध्याय में शायद बतलाया गया है सबई पुलिसा यदि रुचि नहीं है सम एव केवल धर्म संस्कृतपुंसान समय भगवान की लीला कथाओं में जिनकी रुचि नहीं हुई उनका सभी परिश्रम बेकार। कुछ दिन ही नाम करेंगे इसके बाद नाम भी छोड़ देंगे यदि कथा में रुचि नहीं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं किंतु हरिकथा में रुचि नहीं, हरि नहीं कथा सुनते हैं, सूर्य में दबा दें सेवा खड़ा रह जाएगा। इसलिए हरि कथाओं में रुचि यदि रहेगी तो उसका नाम के प्रति आदर भी बढ़ता जाएगा और सेवा में भी रुचि रहेगी, सब समय प्रसन्न रहेगा और उसकी भक्ति भी बढ़ेगी। जिन लोगों को भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है उनके लिए बहुत गड़बड़ी, वो लोग सोचते नहीं है। इसलिए लीला कथाओं में रुचि रखने की चेष्टा करो, नहीं रुचि है तभी सुनेंगे, नहीं हरिनाम में रुचि रह गई है तभी हरिनाम। वैष्णव के संग में रहने की इच्छा नहीं कर रही, मन कहता जी नहीं मैं स्वतंत्र होकर कह रहे तो अभी तुम इसे जोर करके रखना चाहिए। इसे किसी भी प्रकार से हरि कथा में जरूर रुचि होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार लोगों को तंग भी करता हूँ, सारी हरि कथा में बैठो, मार्ग में बैठो, यदि वो हमसे यदि करीब से भी है तो कोई बात नहीं, भगवान की कथा तो कह रहा है, उसने शास्त्र में लिखा है। वासुदेव क्यों कहा गया? सप्तम विशुद्धम वासुदेव, विशुद्ध सप्त में ही प्रभु स्थिर रहते हैं, जिसका अविशुद्ध सप्त नहीं हुआ प्रभु नहीं आते, उन्हीं के पुत्र के रूप में है। इसलिए वसुदेव महाराज जी शुद्ध सप्त माने जाते हैं, सप्तम विशुद्धम वसुदेव और उनके पुत्र नहीं गया। यदि वह शुद्ध सत्व नहीं रहा, उनके प्रति ममता प्रीति नहीं गई, वो नहीं है। तुम्हारी ऐसे कृष्ण के प्रति, वासुदेव के प्रति, उनकी लीला कथाओं के प्रति नैतिक की गति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम राज सत्तम हो और तुम्हारी बुद्धि भी करोगी। इसलिए लीला कथा में श्रवण में भाव सुंदर रुचि होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए। हमारे जीवन का यही कारण है, हमारे भक्ति का यही कारण होगा। जीवों को तरह तरह के संदेह हैं, अच्छा भाई यहाँ पर कितना दिन अभी और चलेगा, इसके बाद में क्या होगा, क्या होगा इसके बाद, जब वैष्णव लोग ऐसे नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जीवन का निर्वाह होगा, ये तो हम लोगों की। और जो संसार में उनकी क्या क्या संदेह उनका होता है, उनके संदेह और प्रश्न का कोई अंत नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, दुर्योधन की तरफ में और धृतराष्ट्र की भांति में, धृतराष्ट्र राजभवन में बैठा है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो क्या सोचता है, धर्म क्षेत्र समवेता दुष्कवा मामका पांडव वास्तव किम अपूर्व पर जनता की युद्ध करने के लिए गए और जनता भी हमारे बेटे जीत नहीं करें, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर क्यों पूछ रहा है, क्या कर ले। अच्छा यदि पांडवों की बुद्धि विपरीत हो जाए और वो संतुष्ट हैं छवि क्षेत्र में जाकर के, अब क्या करना चाहिए, जरूरत नहीं है, ये संसार नष्ट हो इसके लिए युद्ध करके क्या, उनको विरक्ति संसार से आ जाए और युद्ध करना छोड़ दें तो बहुत ही सुख पा हो सकता है। अथवा यदि हमारे पुत्रों को दुर्बुद्धि हो गई और उस धर्म उनके अंदर में आ गया, उन्होंने कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे पांडव रूप में जाएंगे, तो फिर ये तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, आखिर में हुआ क्या है, सोच रहा है। इसी तरह संसार में युद्ध चल रहा है मन के अंदर में, कितना युद्ध चल रहा है सब समय, किसी का मन एक सेकेंड के लिए बैठा है, विशेष करके जो भजन नहीं करते सब समय, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या होगा। भगवान जो भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते उनकी यही, भक्तों को क्या होती है, भक्ति कैसे बढ़े, भगवान का भजन नहीं हो, बस एक ही चिंता है और दूसरी चिंता नहीं। और इन लोगों को किंतु अधिकांश लोग के जितने हैं उनके प्रश्न कैसे हैं, प्राकृत हैं और संसार के विषय को लेकर के ही संदेह, चिंता, दुश्चिंता, संकल्प और विकल्प करते हैं। और दूसरा भी परिषद में क्या सिर्फ महाराज परिषद की बुद्धि सम्यक व्यवस्थित होने के कारण ही उन्होंने केवल कृष्ण की लीला कथा को ही सीखा। इसके में कृष्ण की कौन सी लीला थी, मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में कौन कौन सी लीला थी, कैसे आविर्भूत हुए, कहाँ आविर्भूत हुए, कौन सी गज में कौन सी लीला थी, बस यही एक कृष्ण की। सुखदेव गोस्वामी परिषद के प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए हैं, अप्रसन्न हे राजा सचमुच में तुम्हारी बुद्धि तुमने ऐसा प्रश्न पूछा, ये प्रश्न ही संसार को सुधार करने वाले, प्रश्न करने वाले को, वक्ता को, हमें भी तुमने आज हमारा भी उद्धार कर दिया। ये कहने का तुम्हारा तो उद्धार हो गया, प्रश्न किया और तुम्हारा हो गया, और हमारा भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हृदय में उद्दीपना हो रही है। कृष्ण की सारी लीलाएं हमारे हृदय में प्रकट, जिसके हृदय में कृष्ण की सारी लीलाएं उत्पन्न हो जाए, प्रकाशित हो जाए, फिर उसका क्या बाकी रहा। आज जो प्रश्न कर रहा है वो कैसे प्रश्न किया होगा, जिस विषय में जो चिंता करता है उसी में तो प्रश्न करता है। पर किस महाराज ने लिए उसमें से एक रत्न निकाल करके दूसरा किया, अतः दूसरी की चिंता थी। और जब इनको उद्दीपना हुई तो कृष्ण की बाल्यकाल से लेकर के और अंत तक जितनी उनकी लीला कथाएं, रस भरी लीलाएं हैं, सब उनको कभी अब तो हमारा उद्धार आ जाएगा। व्यास जी पढ़ाते समय में इनको पढ़ा रहे थे, उतना उद्दीपना नहीं हुई होगी क्योंकि अभी सीख रहे हैं, अभी विद्यार्थी हैं उसमें नहीं। अब विद्यार्थी होने के बाद में जब लीलाओं का चिंतन किया होगा और जब वो सत्य अनुभव कर रहे हैं, अब कोई पूछे तो अब उद्दीपना, इसलिए कहते हैं कि किन कथाओं के द्वारा ये लीलाएं हमारे हृदय में आएंगी। अब हमको भी तुमने प्रसादित कर दिया इस प्रश्न के द्वारा ही, और समवेत श्रोत्री मंडली, इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी सब प्रकार के लोग हैं, उनको भी तुमने विकास किया। कैसे हमारी ये मन की भावनाएं जो प्रकट होंगी, लीला कथाएं होंगी, उस रस में ये लोग जुड़ जाएंगे, उनका कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या सब कुछ जुड़ जाएगा और कृष्ण के प्रति उनकी भी ऐसी ही नई स्थिति उनका काफी कल्याण हो जाएगा। कृष्ण विषय कथाएं जो है, प्रश्न है, इसमें एक अचिंत शक्ति है। जैसे कृष्ण में अचिंत सर्व शक्तियां हैं और कृष्ण से अभिन्न कृष्ण का नाम और कृष्ण की लीला है, तो इसमें भी अचिंत शक्ति होगी। इन लीलाओं कथाओं में ऐसी एक अचिंत शक्ति है कि उसके जोर से अब तक आप लोग बढ़े हुए हैं, नहीं कभी छिन्न भिन्न होकर के कहां चले जाते। और सब जगह किसी भी मठ मंदिर में 2-4-5 आदमी आप लोग सब कुछ जुड़े थे इन कथाओं के बाद। एक आदमी जोड़ता है किस लिए, विषयों के संग्रह के लिए जुड़ते हैं और उसमें उनको सभी दुखी रहते हैं, उनका फिर चिंत दिन भगवान की लीला कथाओं के माध्यम से कवि से जो जुड़ता है उनका उसमें अचिंत शक्ति होती है। ये शक्तियां किस लीला कथा के माध्यम से कृष्ण ही हृदय में प्रवेश करते हैं, मालूम नहीं हो रहा किंतु हो रहा है धीरे धीरे। इसे भगवान के चरण के से निकल करके जैसे गंगा जी अपने दर्शन से अपने स्नान करने वाले को और स्पर्श करने वाले को, स्पर्श, दर्शन और स्नान इत्यादि किसी न किसी प्रकार से चीजों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार से ये हरि कथा थोड़ा भी जटिल संबंध हो तो जीव मात्र को भी पवित्रता देती है, शिवों के 3 कुंभ को पवित्रता देती है। जैसे सालोग्राम सीधा एक आदमी को दीती है, रोज यमुना जी में स्नान करेगा, गंगा जी में स्नान करेगा और एक सुंदर घड़े में मान करके वहां का पानी लेकर के ठाकुर जी के लिए रखेगा। पुजारी जी नियमित रूप में स्नान इत्यादि तिलक आने कर करके वो घड़ा से उठाया और शालिग्राम ठाकुर जी को स्नान करा करके अर्चन किया और वहां पर रख दिया और सब लोग ठाकुर जी को प्रणाम करके और उनका नाम शुक्र तीनों लोगों का उठा दिया। अच्छा किसका अभी हुआ, अभी किसका हुआ, जो पानी ले आया वो स्नान कराया आज दिया। हम समझते हैं कि जिन्होंने दिया उसी का, क्योंकि वो स्नान करा करके अंत में वो भी पान करेगा, इसलिए पान अधिक। इसलिए श्रोता जो है ना परीक्षित महाराज जी उस वक्ता से भी श्रेष्ठ हो रहे हैं तथा प्रश्न कर रहे हैं और साथ साथ में गैया को दूर करके उसका दूध भी पी रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जैसा प्रसंग होता है प्रसंग के अनुसार फिर तो कथा सुनने वाले को ही सर्वत्र कहा गया है। कथा की महिमा जो कथा कहने वाला है, जो कथा सुनने वाला है, कथा सुनने कहने वाला है से भी कभी कभी कथा सुनने वाले को रोमांच कम पूरक इत्यादि भाव आता है, कभी कभी ऐसा भी और कभी कभी उन्नत अधिकार होने पर वक्ता किंतु कल्याण कभी का श्रोता वक्ता प्रश्न करता। उसी प्रकार से जब प्रश्न नहीं इतनी अचिंत शक्ति है जो तीनों को प्रश्न करने वाले को उत्तरदाता को और श्रोत्री मंडली सबको उत्साह कर देता है तो इसका उत्तर सुनने वालों को क्या नहीं होगा कि मूर्ति न्याय से ये बदला दे। परीक्षित महाराज ने कथा सुना और कुछ नहीं किया, उनको समय नहीं मिला। यदि उनको कथा सुनने के बाद में समय मिला होता तो क्या किए, क्या करते, हरिनाम कीर्तन करते, भागवत की कथा फिर से सुनते कहते और नौ प्रकार की चौसठ प्रकार की भक्ति कांगों का पालन करते, यही तो करते। इसलिए कथा सुनने मात्र से ही उनका कल्याण, एक एक अंगों का पालन करने से ही भक्ति हो जाती है और सुसार हो जाता है। परीक्षित महाराज जी कथा का श्रवण किया, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने चेतन किया, प्रहलाद महाराज जी ने स्मरण किया, लक्ष्मी जी ने उनका अंग्री सेवन किया, पृथ्वी महाराज ने उनका पूजन किया, हनुमान जी ने उनसे चरण की सेवा की, बलि महाराज ने सर्वस्व आत्मनिवेदन किया। इस तरह से एक एक द्वारा फिर तो मूल है हरि कथा श्रवण, और ऐसा में कोई नहीं है जो हरि कथा का श्रवण नहीं। जब प्रश्न नहीं इतनी शक्ति है तो उसके उत्तर जो कथा होगी उसमें कितनी शक्ति होगी, प्रश्न कौन करेगा, जो विभावित होता है जिस विषय में उसी विषय में होता है, जो लीला कथा में विभावित होगा वो लीला कथा का प्रश्न। आप लोग भी ऐसा चेष्टा कीजिए, लीला कथा विषय भगवान के सत्व विषय, लीला कथा विषय उनके माधुर्य इस विषय पर भागवत एकादश कर्म में बने। कितना बजे भाई,
सात बजे में आज
बहुत देर हो गए, अभी हम लोग 10-11 आदमी दिखाएंगे। तो आप तो मनमोदित शब्द सुना सब धर्मों से विश्व दूर एकादश स्तंभ में ऐसा वर्णन किया गया। भगवान की लीला कथाओं में ऐसी एक आश्चर्यजनक अचिंत शक्ति है, यदि कोई श्रीमद् भागवत में वर्णित कथाओं का श्रवण कर अनुपस्थित हो अनुगत में पठन करें निरंतर, ध्यात उसका ध्यान करें, आज भी हो उसका आदर भी करें, वह अनुमोदन वाह बहुत सुंदर कथा है, अनुमोदन भी करें तो सब्जना सद्धर्मो विश्व देव विश्व द्रोह भी, देवताओं का जब द्रोह करता है विश्व का भी द्रोह करने वाला आचरण करने वाला व्यक्ति भी ये जो सद्धर्म है लीला कथाओं का सुनना ये उसको सबसे ये देखो सिर्फ श्रद्धा रखो ऐसे सब सद्य सुना सद्धर्म सद्धर्म बने क्या धर्म शरीर का धर्म मन का धर्म आत्मा का धर्म सद्धर्म किसको कहते हैं सब अर्थात भगवान ही एकमात्र सत्य श्री सत्य सत्य की जोड़ी है और भगवत भक्त गुरुओं के आचरित श्रमण कीर्तन आदि धर्म का श्रमण से कीर्तन से ध्यान से आदर से अनुमोदन है विश्व द्रोही भी सत्य पति हो जाता है। सत्य मैंने क्या जो सत्य साधु लोग जो आचरण करते हैं भगवत इनका श्रवण करने से अनुमोदन करने से भी अगर को श्रवण करने से कीर्तन करने से ध्यान करने से भी इसका फल इसलिए हे महाराज तुम धन्य हो आज हमको तुमने भी कृतार्थ कर दिया ऐसे प्रश्न और मैं चुपचाप ध्यान करता बस एक और इस समय में कीर्तन श्रवण चिंतन सभी एक साथ में इसलिए लीला कथाओं के प्रति हम लोगों का भी ऐसा अनुराग होना चाहिए आज हमारे नंदमणि जाए हैं।